थैंक यू लो, साउंड कम कर देना, थैंक यू साउंड। चलिए हम बैठ जाएंगे और आगे चलें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 12 वचन से हम लोग देखेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 12 वचन से, पेज नंबर 289। आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम वचन को पढ़ते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, अपने वचन से बोले और बातचीत करें। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आज आपके वचन को सुनते हैं। ये डिवोशन हमारे लिए ब्लेसिंग रहे और हम लोग तेरी महिमा का कारण बन जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को यहाँ कुछ शिक्षा देते हैं। तीमुथियुस को पौलुस उस अनुग्रह के विषय में बता रहे हैं जो अनुग्रह पौलुस ने अपने ऊपर पाया। परमेश्वर ने हम में से हर एक को अपना अनुग्रह दिया है, आमेन। हम में से हर एक को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है और वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने दिया है वो हमारे लिए सामर्थ्य है इस पृथ्वी पर, जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, आमेन। जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को, यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है, आमेन। यहां पर पौलुस तीमुथियुस को यह बात बता रहा है कि उसका इनकाउंटर परमेश्वर से हुआ, उसका आमना सामना परमेश्वर से हुआ, और आमना सामना होने से पहले वो कैसा था और आमना सामना होने के बाद वो कैसा है, आमेन। तो हम में से हर एक को परमेश्वर के साथ आमना सामना करने की आवश्यकता है, और मैं इस बात पे पूरा यकीन करता हूं, जीवन उसी का बदलता है जिसका परमेश्वर के साथ आमना सामना हो जाता है। मसीह में आ जाना, 10 साल पुराना हो जाना, 20 साल पुराना हो जाना, 50 साल पुराना क्रिश्चियन कहलाना, ये आम बात है। लेकिन अगर आमना सामना नहीं हुआ है तो 50 साल के बाद भी जिंदगी नहीं बदलेगी, धोखेबाज ही रहेगा, याकूब के समान। याकूब का आमना सामना परमेश्वर के साथ हो गया तो याकूब के पास एक टेस्टिमनी है। तो आज आपको और मुझे भी यही प्रार्थना करनी है, मेरी भी टेस्टिमनी हो, मैं भी अपने लोगों से कह सकूं कि मैं यीशु मसीह को जानने से पहले इस प्रकार से जी रहा था, लेकिन आज मैं इस प्रकार से जीता हूं। पौलुस पहले भी एक अगुआ था, बहुत पढ़ा लिखा, एक एजुकेटेड लीडर था वो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था पौलुस, लेकिन आज भी एक अगुआ है जब उसका आमना सामना यीशु से हो गया है। आप पहले भी अगुवाई कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की भी तो अगुवाई करते हैं, ऐसा थोड़ी ना हम सिर्फ चर्च की अगुवाई करेंगे या लोगों की अगुवाई करेंगे। अगुवाई घर से शुरू होती है। अगुवाई कहां शुरू होती है? घर से शुरू होती है। आप अगर एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपने घर को अच्छी अगुवाई देनी होगी, और एक अच्छा अगुआ बनने के लिए आपको किसी को फॉलो करना होता है। पौलुस भी किसी को फॉलो कर रहा था, वो बड़ी शिक्षा पा रहा था, बड़ा ट्रेनिंग सेंटर में था, कोई ना कोई तो था उसका आदर्श, और अभी बाद में उसका आदर्श यीशु बन गए हैं, आमेन। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि हम कितने पुराने मसीह हो जाए, हमारा आमना सामना यीशु से अगर नहीं हुआ है तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो सकते। मैं बहुत बार अपनी चर्च में लोगों को बड़ा चिल्ला चिल्ला कर कहता था, यार तुम संडे को लेट आते हो, जल्दी आया करो। मुझे गुस्सा आ जाता था, क्रोध से भर जाता था, मैं खड़ा होता था, आगे खड़ा होकर मैं देखता था ये लेट आया, उसके प्रति मेरा दिमाग बड़ा खराब हो जाता था, बड़ा क्रोध आता था मेरे मन में कि यार किस प्रकार के लोग हैं, खुदा ने अनुग्रह किया, इनको नरक से बचा लिया, इनको उस दलदल की कीस से निकाल दिया, और ये यार कितने बजे चर्च आ रहे हैं, इनको चर्च का आदर और सम्मान नहीं मालूम है क्या। तो मैं बड़ा गुस्से में आ जाता था, लेकिन एक दिन प्रभु ने मुझे समझाया कि जब ये मेरी नहीं मानते तो तेरी कहां से मानेंगे। मेरा गुस्सा खत्म हो गया। आज भी चर्च इजरायली है, जैसे वो हटीले थे आज हम भी हटीले रहते हैं। मसीह में आना प्रभु की योजना है, लेकिन उसके बाद जीने के लिए कदम आपको और मुझे बढ़ाना है, फैसला आपको और मुझे करना है। तो आमना सामना जब तक प्रभु से नहीं होता ना, कितने पास्टर हैं, उनके बच्चे प्रभु में ठीक से चलता ही नहीं है। पता है क्यों? उन बच्चों का आमना सामना प्रभु के साथ हुआ नहीं है भाई। हमारे बच्चों का भी आमना सामना प्रभु से होना चाहिए। हमें अपने परिवार को सिखाना है, एक अच्छा लीडर होने के नाते, एक अच्छा अगुवा होने के नाते अपने परिवार को बिठा के बताना है कि प्रभु से आमना सामना करें, तभी जीवन बदल सकता है। जीवन बदलने के लिए कोई स्थान नहीं है, जीवन बदलने के लिए कोई शिक्षा नहीं है, जीवन बदलने के लिए कोई बाइबल कॉलेज नहीं है। 5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद, 10 साल की ट्रेनिंग करने के बाद भी लाइफ चेंज नहीं होती। धोखेबाज धोखेबाज ही रहते हैं। मैं धोखेबाज शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं याकूब के विषय में, क्योंकि याकूब एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आमना सामना पनियल में परमेश्वर के साथ हो गया और उसके बाद वो एक डिफरेंट व्यक्ति बन गया। याकूब नीरा इज़राइल हो गया। आमेन। सेम यही कहानी पौलुस की है। रेगिस्तानी मार्ग में आमना सामना हो गया और वो पौलुस नहीं रहा, शाउल बन गया। हालेलुया। वो शाउल से पौलुस बन गया। सॉरी, बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। आपका परमेश्वर परिवर्तन का परमेश्वर है। आप जैसे मसीह में आए अगर वैसे ही रहते हैं जिंदगी भर, परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। आप अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको चेंज होना है। आमेन। क्या होना है बोलो? चेंज होना है। पहले हम प्रभु में आने से पहले कैसे भी जीते रहे होंगे, लेकिन अब हमें वैसे नहीं जीना है। तो जब मेरे को लोगों को देख के गुस्सा आता था, मैं उनको देखता था, तो मुझे ये समझ में आया, परमेश्वर ने कहा भी ये मुझे नहीं जानते। मैंने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हो, ये तो विश्वासी है। हाँ बस विश्वासी है, लेकिन ये मुझे नहीं जानते। मुझे जानने वाला मेरा आदर करता है, मुझे जानने वाला मेरी कलीसिया का आदर करता है, मुझे जानने वाला सम्मान करेगा, मैंने जो उसको समय दिया उस समय का। आप जानते हैं भजन संहिता 90 के अंदर क्या लिखा है? भजन संहिता 90 के अंदर 12 वचन में लिखा कि मुझे दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। दिन गिनने की समझ दे। हमारा जो समय है उसको समझने के लिए हमें समझ की आवश्यकता है। गया हुआ समय कभी वापिस नहीं आता है मेरे प्रियो, गया हुआ समय कभी वापिस नहीं आता है। एक अगुए के जीवन से लोगों को शिक्षा पाना है। आमेन। आप और मैं किसी के लिए शिक्षा का विषय बनना चाहिए। आपके और मेरे जीवन से किसी को सीखना चाहिए। अब जब मैं समय की बात कर रहा हूं तो मैंने समय को किससे सीखा? मैंने मेरे लीडर से समय को सीखा। मेरे सीनियर पास्टर डॉक्टर और पास्टर साइंटिस्ट है, उन्होंने एक साइंटिस्ट की जॉब को ठुकरा कर खुदा के साथ चलने का फैसला किया और सेवा करने दिल्ली में आ गए। आज से 40 साल पहले ओमान देश को छोड़कर, अच्छी इनकम को छोड़कर उन्होंने कहा प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, और आ गए और मुंबई में शादी करके दिल्ली अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गए और प्रभु की सेवा करने लगे। और उनसे मैंने इस बात को सीखा, कहीं पे भी जाना होता है 15 मिनट पहले बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। कहाँ खड़े होते हैं? कहाँ खड़े होते हैं बोलो जोर की? बाहर। कैसे पता मुझे? मैंने उनको अपनी चर्च में इनवाइट किया, वो मेरी चर्च में आए, और आने के बाद ठीक 5 मिनट पहले उन्होंने कॉल किया। तो मैंने कहा पास्टर जी आप कहाँ पर हैं? कह रहे मैं तो 15 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ, आपने मुझे 11:30 का टाइम दिया था, मैं 11:15 से वहाँ खड़ा हूँ। तो मैंने कहा खड़े क्यों है? नहीं नहीं आपने 11:30 का टाइम दिया तो 11:30 आऊंगा। हाँ आपको आदर आपकी एजुकेशन से नहीं मिलता है, आपको आदर आपके वरदानों से नहीं मिलेगा, आपको आदर मिलेगा अनुशासन से जो आप अपने जीवन को देते हैं। आपके बच्चे भी अनुशासित तभी होंगे जब आप अनुशासित होंगे। अगर आप अनुशासित नहीं तो आपका साथ जितने पीछे होंगे वो भी अनुशासित नहीं होंगे। आपका जीवन प्रार्थना में अनुशासित नहीं होगा, आपके पीछे कोई प्रार्थना करने वाला नहीं पैदा होगा। आपका जीवन वचन में अनुशासित नहीं होगा, आपके पीछे कोई वचन पढ़ने वाला पैदा नहीं होगा। कितने पास्टर हैं फोर्स लगा रहे अपने बच्चों को, वचन पढ़ो प्रार्थना करो, कभी नहीं तुम्हारी औलाद परमेश्वर का वचन पढ़ेगी, कभी नहीं तुम्हारी औलाद परमेश्वर का जो है प्रार्थना करेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें प्रार्थना करते हुए नहीं पाया, उन्होंने तुम्हें बाइबल पढ़ते हुए नहीं पाया, उन्होंने कहीं पे भी समय पे तुम्हें जाते हुए नहीं पाया। वो यही कहेंगे हमारे पिताजी तो 1 घंटा लेट जाते हैं, हम तो 2 घंटे लेट जाएंगे। यस
परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है, और जो परमेश्वर कार्य करता है ठीक समय पे कार्य करता है। और मैं आपको बता दूं, सूरज भी सही समय पे उगता है और सही समय पे पृथ्वी पे अपनी पहली किरण देता है। सूरज परमेश्वर की बात मान सकता है लेकिन इंसान नहीं। परमेश्वर हर एक काम ठीक समय पे करता है। पढ़ा है बाइबल में समय के बारे में? पढ़ा है कभी बाइबल में? ठीक समय पर हमारे लिए मरा, ठीक समय पर, और उचित समय आएगा हमें बढ़ाएगा, नियुक्त समय पर। आप समझे? जब आप एक अगुआ बनने के लिए जाते हैं, आपका आमना सामना परमेश्वर के साथ हो जाता है, तब यह परिवर्तन आता है। इसलिए हमें आमना सामना करने की जरूरत है। जब हम आमना सामना करते हैं हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। नहीं तो कई पति बोलते हैं कि सीखती क्या है चर्च में जाके, आप क्या सिखाते हो इसे, घर में आके तो इसकी जबान बेकार है। यस, क्योंकि परमेश्वर का आमना सामना नहीं हुआ मेरी बहन का अभी तक। जिस दिन परमेश्वर के साथ आमना सामना हो गया और परमेश्वर समझ में आ गया तो उस दिन लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। विचारधारा इसीलिए चेंज नहीं होती है क्योंकि परमेश्वर अभी तक जाना ही नहीं है। यीशु ने चेलों से पूछा ना, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? क्या पूछा लोग मेरे बारे में? तो किसी ने क्या बोला? भविष्यवक्ता, एलिया, योन्ना बपतिस्मा देने वाला, मतलब सब जितने लोग उतनी मानसिकता। आज यीशु के बारे में दुनिया क्या कहती है? अंग्रेजों का भगवान है, गोरा है, पैसे देता है, गाय खिलाता है, खून पिलाता है। क्या कहते हैं लोग यीशु मसीह के बारे में? यही कहते हैं। पतरस ने बोला, तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो यीशु ने क्या बोला? धन्य है तू जिस पर परमेश्वर ने प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। चेंज जीवन उसका होता है जिस पर परमेश्वर प्रकट होते हैं। आमेन। आज मुझे और आपको आमना सामना करने की जरूरत है, और एक दिन नहीं, हर मॉर्निंग हमें आमना सामना करना चाहिए। अपने जीवन को अनुशासित करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रार्थना करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग बाइबल स्टडी करना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा जीवन होना चाहिए कि हमारी सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले होनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग एकदम सूरज के साथ। जब आप उगेंगे तो आप भी दुनिया को प्रकाश देंगे, नहीं तो आप दुनिया में अंधेरा ले आएंगे। और परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। इसलिए आपको सूरज के साथ निकल जाना चाहिए बिस्तरों में से, ताकि आप जगत को प्रकाश दे सके। आमेन। और सूरज के साथ जब आप निकल जाते हैं तो उसके साथ साथ समय पे प्रार्थनाएं भी अटेंड करनी चाहिए, समय पे बाइबल भी पढ़नी चाहिए, सभाओं में समय पे जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी इंसान के लिए नहीं, आप सर्वशक्तिमान के लिए आए हैं। चाहे कोई भी सभा हो, यीशु के नाम में जो होती है यीशु वहां मौजूद होते हैं। हम लेट होकर यीशु को इंतजार कराते हैं। किसको इंतजार कराते हैं? बोलो, यीशु को इंतजार कराते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि पौलुस की तरह हम भी किसी के लिए आदर्श बन जाएं। आज देखो, मैं अपने पास्टर का नाम ले रहा हूं ना यहां पर, कि मैंने उनसे सीखा अनुशासन। हमारे यहां शादी थी, उनको टाइम 11:30 का दिया, कितने बजे पहुंच गए? 11। शाम को 4 बजे थी, 4 बजे पहुंच गए, वो 4:30 थी, 4 बजे पहुंच गए। और मैं उनको आधा घंटा आगे ही लेके चल रहा था। मैंने कहा पास्टर जी आप इतने बजे ही आना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास्टर के बारे में। और मैंने उनसे सीखा, मैंने एक दिन अपनी चर्च में खड़े होकर कहा मुझे वो टाइम बताना जो शुरू होगा, क्योंकि मैं टाइम पे आऊंगा, टाइम पे चला जाऊंगा। सूरज के समान सूरज आता है और जाता है भाई, किसी के रोकने से रुकेगा नहीं वो। तो मैं भी अनुशासित आदमी हूँ, टाइम पे आऊंगा, टाइम पे यहाँ से चला जाऊंगा। आपको पता है ऐसा करने से कितनी इज्जत मिलती है? लोग आपको फॉलो करेंगे। हमें लगता नहीं है, लेकिन आप और मैं बहुतों को प्रभावित करने के लिए बुलाए गए हैं। हमें अपनी जिंदगी से आलस को डांटना है। आलस दुष्ट आत्मा है, और उस दुष्ट आत्मा को हमें अपने जीवन से बाहर करना है, नहीं तो ये दुष्ट आत्मा हमें एक दिन नष्ट कर देगी, हमारे जीवन में कोई फल नहीं लगेगा। क्योंकि आप बाइबल पढ़िए, नीति वचन में लिखा है इस दुष्ट आत्मा के बारे में, आलसपन की दुष्ट आत्मा के बारे में बाइबल में लिखा है नीति वचन के अंदर। मैंने जाते हुए देखा आलसी को, है कैसा था वो, एक ऐसे पेड़ के समान हो जिसको बड़ा और जकड़ लिया, फल ही नहीं आ पाएगा। डाकू की तरह कंगाल बनाएगा, ऐसा लिखा है। तो आपको और मुझे कैसा होना है, कैसा होना है बोलो, बोले ईमानदार होना है, अपने समय में ईमानदार होना है। इस ईमानदारी का फल कौन देगा बोलो, कौन देगा इस ईमानदारी का फल? मैं 20 साल से आज तक चर्च में लेट नहीं गया हूं, 20 साल आज तक चर्च में लेट नहीं गया। मैं ये सोचता हूं मेरे बिना चर्च नहीं चलेगा। शादी से पहले कुंवारा था तब तो चलो चले जाते थे ना, लेकिन शादी के बाद भी प्रभु ने हमें बुद्धि दी औरत को संभालने की, कैसे इसे संभालना है। 1 घंटे पहले का टाइम देता हूँ, कहीं पे भी जाना होता है इतने बजे निकलना है, जाना होता है 11 बोलता हूँ 10 निकलना है। अब कई बार हो गया तुमने 10 बोला और तुम 10:30 निकल रहे हो, तो ये तो मैंने कहा क्या हो गया, गलत है, तैयार होके बैठी हो, अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी देर मैं भी देख लेता हूँ तुम्हें, फिर बाहर चलोगी। अब उसको आदत हो गई और अब तो फटाफट तैयार हो जाते हैं, उसको पता है छोड़ के चले जाएंगे। हाँ छोड़ के चला जाता हूँ, ईमानदार रहना है प्रभु के सामने। जो मेरे सामने ये भाना मारता है ना, पास्टर जी हमारे तो बच्चे हैं, हमारे तो बच्चे नहीं, 3 बच्चों को लेके सेवकाई करी है, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब हम फ्री हो गए, अब तो वो खुद ही घूमते फिरते रहते, अब तो मेरी बेटियाँ पढ़ाती हैं संडे स्कूल में, 14 साल की लड़की है मेरे से अच्छा प्रचार करती है, 11 साल की बेटी है मुझसे अच्छा प्रचार करती है, मुझसे अच्छा, मुझे भी सिखाती है, पापा आपने ये गलत बोला सॉरी बोलो। थोड़े दिन पहले गाड़ी चला रहा था, आगे एक बाइक वाला गया, मैंने कहा गधा अभी बच गया था, मेरा बेटा बोला पापा सॉरी बोलो जल्दी से प्रभु को, वो प्रभु का स्वरूप है, आपने उसको गधा क्यों बोला? तो मैंने तुरंत बोला सॉरी प्रभु मुझे माफ करना, और मैंने बेटे को बोला बेटा सॉरी तू कभी गधा नहीं बोलना, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी बोलेगा ना फिर कल को, सीखना है तो अनुशासन लाना है, और ये अनुशासन तब तक नहीं आएगा जब तक आमना सामना नहीं होगा। प्लीज बुरा नहीं मानना, आमना सामना नहीं होगा तब तक। पौलुस क्या कह रहा है देखो, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किया। बिना समझे बूझे जो काम करते चलो हो गया, लेकिन जानबूझ के करते वो क्या है? हाँ जी हेलो जी, जब तक आपको कुछ पता नहीं था, जब तक अकल ठिकाने नहीं थी, तब तक तो जो किया किया, अब समझदार हो गए तो व्यभिचार कर रहे हैं, समझदार हो गए समय की इज्जत नहीं करते, समझदार हो गए तो पास्टरों का आदर नहीं करते, लोगों का आदर नहीं करते, समझदार होने के बाद तो पौलुस कहता है ज्यादा करो। हेलो, अगर पहले आप ऐसे थे तो अभी 15 मिनट पहले वाले बनो, आमेन। अभी ज्यादा बाइबल पढ़ो, अभी ज्यादा प्रार्थना करो। पहले 4 बजे उठ के घंटी बजाने जाते थे भाई साहब, 4 बजे उठ के घंटी बजाने जाते थे, और अभी तो 4 बजे गहरी नींद आती है। मैं आज ही सोच रहा था, मेरे को लग रहा बाबा बनना पड़ेगा, क्योंकि बाबा कह दे ना रात को 12 बजे भी घंटी बजाओ तो बजाएंगे, पास्टर कह दे रात को 12 प्रार्थना करो क्यों करें, अच्छी नींद आती है पास्टर जी उस समय। तो भैया पादरियों को भी बाबा बन जाना ठीक है, मेरे को लगता है डराओ विश्वासियों को, तब अकल ठिकाने आएगी इनकी, 3 बजे 4 बजे प्रार्थना करेंगे। हाँ भाई साहब, मंदिर के दरवाजे नहीं खुलते थे, गेट बजाते थे हम पंडित जी खोल दो, लेकिन चर्च के दरवाजे भी खुल जाते हैं, चर्च की कुर्सियां भी कोई साफ कर लेता है, है? चर्च में झाड़ू पोछा कर लेता है, वो वर्शिप भी खत्म हो जाती है, कुछ कुछ तो बिरयानी के टाइम पे आते हैं, हमारा अनुभव है। पास्टर मीटिंग का तो हमारा दिल्ली का बड़ा अच्छा अनुभव है, मैं देखता हूँ गेट पे लास्ट में बिरयानी के टाइम पे हाथ हिलाते हुए आ रहे हैं, ये कौन सा अनुशासन है जिंदगी का? इसका मतलब आप सारे पास्टरों की इज्जत नहीं कर रहे हैं भाई, हमारे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आपकी दृष्टि में ये सारे जितने पास्टर है वो क्या है, मूर्ख है। आप ही एक बुद्धिमान हो, आप ही अभिषेक, तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, इन सबके ऊपर क्या दुष्ट आत्मा उतरा हुआ है क्या? ये जो टाइम से आके यहां बैठे हैं अपना टाइम खराब कर रहे हैं क्या? लोग सीखना नहीं चाहते हैं, सत्य जानना नहीं चाहते हैं। ब्लेसिंग के रास्ते छोटी छोटी बातें ही है मेरे प्रियो, कोई बड़ी नहीं है। कोई आके तुम्हारे सर पे हाथ रख के तुम्हें हिलाएगा? ब्लेसिंग की बातें छोटी छोटी फॉलो करो तब आएगी ब्लेसिंग। आशीर्वाद चाहते हो तब आएगा जब छोटी छोटी बातें हम लोग फॉलो करेंगे। देखो आज मैं आया हूं, पता नहीं दूसरी बार कौन आके कब बोलेगा, लेकिन अगर आज से फॉलो करेंगे तो दूसरा आएगा उससे पहले आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो परमेश्वर तो चेंज करता रहेगा, किसी ना किसी को भेज के बोलता रहेगा। यही चर्च है, परमेश्वर तो बोलता रहता है, जिसके कानों में सुन ले। परमेश्वर हमसे बातें करता है, अपने अगुओं के द्वारा बातें करता है, लेकिन हमें अगुए बहुत बुरे लगते हैं। कल को आप भी अगुए बनने जा रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी अनुशासित नहीं होगी तो फिर दूसरों की कैसे हो जाएगी? हो जाएगी, आप बताएं मुझे, हो जाएगी? हो जाएगी। हाँ, एक परिवार में एक लड़का पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर रेप कर देता है। बच्चे की गलती है, उसने रेप किया, कहीं ना कहीं उसका पिताजी अपनी उसकी माँ को उसके सामने मारता होगा, गालियां देता होगा, नशा करता होगा। उसकी माँ की कहीं ना कहीं किसी और के साथ सेटिंग होगी, उसके पिता की कहीं सेटिंग होगी, सब देख देख के बड़ा हो रहा है। क्या मिला घर से? फिर रेप नहीं करेगा तो क्या करेगा? मोहब्बत करेगा वो लोगों से। वो मर्डर नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप समझे? आप क्या पैदा कर रहे हैं अपने घर से? आपके कमरे से क्या निकल के बाहर आ रहा है? आप क्या दे रहे हैं जगत को? झांसी को कैसी औलाद दे के जाएंगे? आप मरेंगे तो आपके पीछे से कौन सी संतान खड़ी होगी जो देश को बदल सकेगी? आपको यह आज सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर सिर्फ आपका नहीं, आपकी पीढ़ियों का परमेश्वर है। मेरे को ऐसा लगता है लोग चेंज क्यों नहीं होते हैं? या तो वो सिर्फ सोचते हैं परमेश्वर मेरा ही है, आगे सब छोड़ दो। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, मेरा परमेश्वर मेरी पीढ़ियों का परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों का ही नहीं, मेरे बच्चों के बच्चों का, मेरे बच्चों के बच्चों का, कितनी पीढ़ी बोलो, जब तक अनंत काल नहीं आ जाएगा, जितने पैदा होंगे सबका परमेश्वर है वो। किसके लिए जीना चाहिए? अपने लिए नहीं, अपनी पीढ़ियों के लिए। हेलो, क्या आप ऐसी पीढ़ियों को जन्म देना चाहेंगे जो अनुशासित नहीं है, जो दिल चाहता है वो करते हैं? मन करेगा बाइबल उठाएंगे, मन करेगा प्रार्थना करेंगे, मन करेगा चर्च आएंगे, ऐसी पीढ़ियों को जन्म देना चाहते हैं? बताएं। हाँ, मन करेगा सुसमाचार बांटेंगे। कैसे कैसे लोगों को जन्म देना चाहते हैं? यहाँ जो कुआरे हैं तो क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारी शादियां नहीं होंगी, क्या सोच के बैठे? तुम्हें कुछ नहीं पता परमेश्वर तुम्हें कहाँ लेके जाएगा, तुम्हारे जीवन में क्या करेगा। हमें भी नहीं पता था, लेकिन अगर हम यही सोच के बैठे रहते, हाँ खाली हम ही जिएंगे बस अपने लिए, सब कुछ अपने लिए, सब कुछ अपने लिए, तो आज ब्लेस्ड फैमिली नहीं होती, आशीर्वाद पाया हुआ परिवार नहीं होता, आशीर्वाद वाले बच्चे नहीं होते। समझे आप? मेहनत करनी पड़ती है। पौलुस कहता है, पहले अनजाने में था मैं ऐसा, जानबूझ के ऐसा नहीं होना है। बोलो, अनजाने में जो हो गया हो गया, अब जानबूझ के तो गलती नहीं करेंगे। पड़ोसी को बोलो, जानबूझ के गलती नहीं करनी है कभी। एक सही अगुआ जानबूझ के गलती नहीं करेगा। अगर इब्रानियों को पढ़ाऊं तो बहुत कठोर शब्द है, बहुत कठोर शब्द है। सत्य की पहचान के बाद कोई अपराध करता है तो यीशु दोबारा नहीं मरने आने वाला है, समझे? बहुत कठोर वचन है, इसलिए मैं वो नहीं दे रहा हूं, मैं अनुग्रह की बात कर रहा हूं। अगर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है हम पर, तो क्यों ना उस अनुग्रह का सम्मान करें, क्यों ना उस अनुग्रह को समझते हुए आगे बढ़े। आमेन। परेशानी किसके साथ नहीं है इस दुनिया में? किसी को कुछ कहो, आपने ऐसा क्यों किया, 50 परेशानी बताएगा। किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आया हूं ना, मना कर सकता था मैं? क्या राजेश भाई अपने आप नहीं संभाल सकते थे? मैं मना कर सकता था? वो जबरदस्ती नहीं ला सकते मेरे को यहां पर, वो मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं 2 हफ्ते से घूम रहा हूँ, बीमारी में घूम रहा हूँ, अब तो फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह अच्छा हो गया। पिछले हफ्ते भोपाल में तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी, लेकिन क्यों? अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो कल को दूसरा कैसे सीखेगा ये बात? एक दिन मैं निकल रहा था मिनिस्ट्री के लिए, अगले दिन की मेरी ट्रेन थी मुंबई की। मेरी पत्नी बाहर निकली, पता नहीं क्या हुआ, पैर स्लिप हुआ और एकदम कमर के बल गिर गई। पता ही नहीं चला हुआ क्या, ये हुआ क्या, नीचे कुछ पड़ा नहीं है, पानी नहीं है, सर्फ नहीं है, चप्पल भी नहीं थी, लेकिन एकदम स्लिप हुई और गिरी और ऐसे कैसे रह गई, उसकी गर्दन हिल रही थी बस। मैं परेशान हो गया एकदम से। मैं उसको गोद में उठा के भी अंदर ले जाना भारी हो गया था, क्यों, उसके पेन हो रहा था कमर में। अभी ऐसे में आप सुबह जाओगे मुंबई प्रचार करने, जाओगे जाओगे ऐसे में? मैंने मेरी पत्नी को बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी फोन करके उनको मना करता हूँ, किसी और का इंतजाम कर लेंगे। उसने बोला मैं अकेली हूं, वहां बहुत सारे हैं, मुझे खुदा देखेगा, जाओ। पता क्या हो गया, आज तक ठीक है, कोई कमर में दर्द नहीं हुआ। मेरे मुंबई पहुंचते ही खड़ी हो गई, मुंबई पहुंचते ही, क्योंकि खुदा भी तो परखता है कि मुझे प्यार करता है, अपनी बीवी को प्यार करता है। हेलो, इसीलिए तो अब्राहम को कहा था मार अपने बेटे को। क्या आप तैयार हो आज उन चीजों, अपने आराम को मारने के लिए तैयार हो? आज लीडर बनना चाहते हैं ना, ये माइक पकड़ने से लीडर नहीं होते। 250 रुपए का भी आ जाएगा, 500 का भी आ जाएगा, 1000 का भी आ जाएगा, 10000 का भी आ जाएगा, घर में लगाओ और लीडर बन जाओ। शीशे के सामने अपने आप को खुश करो, अच्छा प्रचार करके खुद को सुनाओ, लेकिन माइक पकड़ने वाले लीडर नहीं होते। लीडर वो होते हैं जो दूसरे के सामने खड़े हो, लोग कहें यस इससे मैं सीखता हूं, इससे मैंने बोलना सीखा है, इससे मैंने समय पे आना सीखा है, इससे मैंने सीखा है आदर और सम्मान करना। आपके बच्चे कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मुझे एक अच्छी मम्मी दी है आपने, तेरा धन्यवाद परमेश्वर मुझे एक अच्छे पापा दिए आपने। मैं देखता हूं मेरे फ्रेंड्स तो चुगलियां करते रहते, लेकिन मेरे मम्मी पापा कभी नहीं करते, इसलिए मैं भी नहीं करता चुगलियां। वाओ, उदाहरण बने अपने परिवार के लिए, उदाहरण बने अपने बच्चों के लिए। आमेन, हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ा देता हूं, बातें बहुत है। 16 वचन देखो क्या लिखा है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। क्या बनूं, बोलो जोर की, बोलो आमेन। मुझे नहीं पता झांसी में पास्टर कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता झांसी की चर्च कैसी है, मुझे नहीं पता झांसी के बिलीवर कैसे हैं, मुझे नहीं पता झांसी के लोगों में अनुशासन है या नहीं। मेरे सामने खुदा तुम्हें लाया, मैं कहना चाहता हूं तुम बदलो तो वो भी बदल जाएंगे। हम यहां बैठ के किसी का जजमेंट क्यों करें, हम किसी की चर्च की जजमेंट क्यों करें, हम किसी पास्टर का जजमेंट क्यों करें, हम बैठ कर कहेंगे खुदा मैं आदर्श बनूंगा, मेरा कलीसिया आदर्श बनेगा। हालेलुया, चाहते हैं आप अपनी कलीसिया में कदम रखें तो विश्वासी लोग तुम्हें देखकर सीखें? ऐसा आदर्श हमें बनना है, जब गांव में जाए तो गांव के लोग कहें भाई ये आदर्श है बंदा। अब आदर्श बनने के लिए देखो कठिनाई तो उठानी पड़ती है, सुबह रजाई से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं समझ आया मैंने क्या बोला, सुबह सुबह रजाई से बाहर निकलना पड़ेगा, कभी कभी नाश्ता भी छोड़ के भागना पड़ेगा, लेट हो रहा हूं मैं, हाँ, और अनुशासन में रहना पड़ेगा, जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। जब तुम नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हारे को कोई फॉलो करेगा? चलो बताओ, जैसा बोगे वैसा काटोगे, है ना। मैं ये सोच रहा था कि यार जब मुझे इतना गुस्सा आता है, मेरी चर्च में कोई लेट आता है, जब मैं कहीं लेट जाऊंगा तो उनको कितना गुस्सा आएगा। अक्ल आ गई भाई, जब मुझे गुस्सा आता तो सामने वाले को भी तो गुस्सा आता होगा, तो मैं समय पे रहूं। आमेन, आदर्श बनिए। आपको और मुझे यीशु मसीह ने अपने जैसा बनने के लिए बुलाया है। आमेन। मयूर विहार में एक चर्च है, राजेश भाई आप जानते होंगे, नाम नहीं बताऊंगा। संडे हो गया, लोग चर्च में पहुंच गए, लोग देखने लगे पास्टर कहाँ है, पास्टर कहाँ है, अरे आज पास्टर कहाँ है। 3-4 लीडर इकट्ठे होके घर पहुंचे, जाके देखा तो पास्टर जी खर्राटे मार रहे हैं खाट पे, सारी चर्च में लोग आ चुके हैं, पास्टर जी खर्राटे मार रहे खाट पे। कैसा आदर्श है रे, सारे विश्वासी खर्राटे मारेंगे घर में, जूम के ऊपर मीटिंग लगा के खर्राटे की प्रार्थना कर लेना, है? विश्वासियों ने उठाया, पास्टर जी उठो, क्या हो गया, चर्च नहीं जाना, आज संडे है। अरे बाप रे बाप, हम तो पूरा हफ्ता तैयारी करते हैं, संडे को ये प्रीच करना है, पूरा हफ्ता। संडे जो प्रीच करना वो दिमाग से निकलता नहीं है। अभी तो मैं जो प्रीच कर रहा हूँ एक महीना हो गया, खत्म नहीं होके दे रहा है, अभी भी दिमाग में वही घूम रहा है, फिर उसी को जाके शुरू करूंगा इस संडे। एक एक महीना, दो दो महीने एक ही टॉपिक सिखाता हूँ मैं अपनी चर्च को, उसी को पढ़ता हूँ, उसी को सीखता हूँ, उसी को सिखाता हूँ, समझे आप। लेकिन वो पादरी साहब सो रहे हैं। आप सो रहे हैं, सो रहे हैं आप? पड़ोसी को बोलो समय पे जाना चाहिए हर जगह, बोलो हर जगह समय पे जाना चाहिए। अच्छा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बताओ, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आप सब लोग यहाँ पर आके बैठे हो 9 बजे से और मैं 10 बजे पढ़ाने आ रहा हूँ, क्या कहेंगे आप मेरे बारे में? चाहे मेरे हाथ रखने से कितनी दुष्टात्मा निकल जाए, मेरे हाथ रखने से कितना भी कुछ हो जाए, मैं आकर प्रोफेसी करूं लेकिन मैं 1 घंटा लेट आया हूं, आपको क्या लगेगा? हाँ, और ये पादरी साहब लगे गाना गाने में, आप खड़े हैं बार बार ऐसे कर रहे हैं, आप पीछे देख रहे हैं, आए नहीं क्या? क्या कहेंगे आप, आपके दिल से क्या निकलेगा मेरे लिए, बोलिए ना, सच्ची बात बोलिए, क्या निकलेगा आपके दिल से मेरे लिए, सच्ची सच्ची बोलना है, मैं सुनना चाहता हूँ।
नहीं, मैं ये तो नहीं सोचूंगा कि बेकार इंसान है, हाँ ये सोच सकता हूँ कि कहीं आप व्यस्त हो गए अपने काम में।
ये बात बिल्कुल अपनी प्रशंसा करवाने के लिए है, कहीं रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया होगा, मीटिंग है, कोई मजाक थोड़ी ना है, पेट्रोल खत्म हो गया, टंकी भर के रख। हाँ, जब कोई मीटिंग की जाती है ना पहले से तैयारी की जाती है। मेरा पास्टर पता है क्या बोलता है, मेरे पास्टर बोलते हैं आपको लग रहा है ट्रैफिक है, 2 घंटे पहले घर से निकलो, आलसी हो सीधा, तुम आलसी क्यों, 2 घंटे पहले निकलो, क्यों नहीं निकलते हो, ट्रैफिक का बहाना मारते हो तुम यार बाहर निकल गए, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपके अंदर बोझ नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हैं, सीधा ऐसे बोलते हैं वो। यहां पर प्यार करते हैं जवान बच्चे या नहीं करते? सूरज हंस रहा है, नहीं करते यहां पर जवान बच्चे प्यार नहीं करते क्या? करते हैं ना, चाहे कितना भी योगी रोमियो वाला चला दे, करते हैं ना, कितना भी बजरंग दल लठ लेके आ जाए, करते हैं ना, कितना बजे पहुंच जाता लड़की के बुलाने से लड़का, खुदा से मोहब्बत कर, मोहब्बत है नहीं खुदा से बकवास कर रहा बाइबल उठा के, प्यार व्यार करते नहीं है परमेश्वर से, और उसके बाद में कहते हैं मैं प्रभु का बेटा हूं, तुम्हारा बदलाव बताएगा, मेरा बदलाव बताएगा, मैं मसीह का बेटा हूं, समझ में आई या नहीं आई? आपका परिवर्तन बताता है कि आप मसीह हैं, मसीह शब्द बोलने से मसीह नहीं होता है। कितने लोग तो आए हुए 4 दिन नहीं हुआ, परवीन मसीह, राजेश मसीह, ये मसीह का टैग तो ऐसे उठा लिया, भाई चाइनीज कंपनी वाले नाइक लगाने से नाइक नहीं हो जाएगा तू, चाइनीज का जूता चाइनीज ही रहता है, चल रहा है ना आजकल टैग लगा लेते हैं, सोचते हैं कंपनी हो गई, कंपनी हो जाती है क्या? अरे घटिया चीज तो घटिया ही रहेगी, टैग लगाने से बढ़िया हो जाएगी, वो फट जाएगी, पता लग जाएगा लोकल और असली में क्या फर्क है, समझ में आई या नहीं आई आपको? नाइक का जल्दी से जूता टूटेगा नहीं, चाइनीज जूता जल्दी टूटेगा, फिर पता लग जाएगा अरे यार मैं तो धोखा खा गया, नाइक का पहनेगा तो मजा आएगा, कंफर्ट लगेगा, नकली पहनेगा ना अरे यार ये तो आधे घंटे में दर्द हो गया मेरे पैर में। हेलो, नकली मसीहों को देख के लोग तंग हो जाते हैं, लेकिन सच में जो मसीह होता है ना वो चरित्र से मसीह होता है, उससे लोग खुश होते हैं। तो आप लीडर बनने जा रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा, आपको अनुशासित आना होना पड़ेगा। अगर आपके पास बोझ है, दर्शन है, हम तो चले जाएंगे, एक मॉड्यूल और बचा है, 5वां, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मसीह से तो आपका रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा? फिर मसीह के लिए ही तो करना सब कुछ, जहां भी रहेंगे वहां हम देखते हैं आपको, पास्टर साहब देखते हैं, कौन देखता है, किसके लिए ईमानदार होना बोलो तो? तो कोई भी काम करते हो मसीह के लिए करना है, आमेन। समय का सम्मान करो और लोगों के लिए आदर्श बनो। पौलुस पहले कैसा भी था, बाद में वो कहता मैं ऐसा नहीं हूं क्योंकि अनुग्रह समझ रहा हूं मैं। तो आप भी अनुग्रह को समझो, मैं भी अनुग्रह को समझूंगा, धीरे 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 जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी अनुग्रह को समझेंगे। हम एक अच्छी लीडरशिप देंगे, अच्छा अगुआ बन देंगे, आमेन। क्योंकि जब हम अच्छा अगुआ बनेंगे तो हम दूसरों को भी अच्छा अगुआ बनाएंगे। पौलुस अच्छा था तो तिमोथियुस को अच्छा बनाया ना, पौलुस अच्छा था तो उसके साथ कितने सारे चेले अच्छे थे ना, कितने सारे उसके साथ काम कर रहे थे ना, बुरे भी थे तो पौलुस उनको शैतान के हाथ में छोड़ देता था। तो हम भी अच्छे लोग बनेंगे तो प्रभु हमारे लिए अच्छे लोगों को खड़ा करने जा रहा है, आमेन। तैयार हैं आप? क्या हम खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं आज, आज की सुबह कह सकते हैं सॉरी प्रभु, हमने अभी तक जितनी गलतियां करी उनके लिए आज हम माफी मांगते हैं, हमें शराबी जिंदगी नहीं जीनी है, हमें अनुशासित जिंदगी जीनी है, सॉरी प्रभु हमारी वजह से कोई नष्ट हुआ हो, हम आदर्श बनेंगे, आमेन। बहुत सी बार ऐसा होता है मीटिंग में जाना है, वो भाई ने बोला भाई मैं थोड़ा सा इतने बजे आऊंगा इंतजार कर लियो, मैं बोलता हूँ सीधा पहुंच जाइयो, तेरी वजह से अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं मसीह के सामने। मैं तो चला, मैंने कहा ना मैं तो बीवी को छोड़ के चला जाता, तो तुम क्या चीज हो मेरे लिए? अरे भाई मैं तो बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाता हूँ, तुम क्या हो मेरे लिए? शुरू के दिनों में हो गया जो भी हो गया, भाई आएगा तो मैं चर्च जाऊंगा, अब नहीं, अब तो तेरे को नरक जाना है, जाना मैं तेरे साथ नरक आऊंगा क्या? मुझे तो प्रभु के पास जाना है, मैं ईमानदार रहूंगा, मेरी चाल तेरी वजह से क्यों बिगाड़ दूं, मेरा अनुशासन तेरी वजह से क्यों बिगाड़ दूं, मेरा अनुशासन ठीक रखूंगा, मैं सही मार्ग पे चलने जा रहा हूं। पश्चाताप करना है, माफी मांगना है। ब्लेसिंग की लाइफ छोटी छोटी बातों से शुरू होती है, मैं फिर कह रहा हूं। नहीं तो मैंने 20-20 साल पुराने लोगों को प्रभु में आए हुए देखा है, रोते ही रहते हैं। 20 साल मुझे भी हो गए हैं, मैं 20 साल में कभी रोया नहीं हूं। छोटी छोटी बातों को फॉलो किया है, आगे ही बढ़े, हम आगे देखते रहे, ईमानदार रहे, ठीक है? तो आए हम खड़े हो जाए और आंख बंद करें, कहें प्रभु मुझे अनुग्रह दे आज। मैं जीवन में बहुत से जगह कम हूं, मेरे अंदर कमियां हैं, लेकिन आज मैं तेरे साथ आमना सामना करना चाहता हूं और तेरे वचन का आदर करना चाहता हूं और मैं अनुशासित होना चाहता हूं और मैं आज तुझे इजाजत देता हूं कि मुझे अनुशासित कर। हे पवित्र आत्मा, आप मुझे अनुशासित करें। मैं विश्वास कर रहा हूं कि मैं हजारों के लिए, लाखों के लिए आदर्श हूं। मैं विश्वास कर रहा हूं मेरे द्वारा बहुत चेले बनने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरे द्वारा गांव गांव में चर्च बनेंगे। मुझे एक अच्छा अगुआ बनने में मदद कर। आज मुझे अपना अनुग्रह दे। मैं आमना सामना करना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं जानबूझ के ऐसी गलती नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुझ पर कोई श्राप आ जाए, बल्कि मैं विरोध का सामना करके जयवंत होना चाहता हूं। जो बातें मुझ में कमी के रूप में हैं, आज मैं उन पर जयवंत होता हूं और आज के बाद उन बातों को होने नहीं दूंगा मेरे जीवन में। मैं शरीर में नहीं आत्मा में जीऊंगा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। बैठ जाएंगे, गॉड ब्लेस यू। पास्टर राजेश का स्वागत करेंगे जो अब हमारे बीच में आएंगे और सेशन लेंगे।